हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति, अब मौन साधे ही बैठी रहोगी या बताओगी भी कि कहाँ जाना है तुम्हें डिनर के लिए? धृति ने खुद को संभाला था। कुछ पल सोचने के बाद उसने अर्णव की ओर निगाहें घुमाते हुए जवाब दिया, मरीन ड्राइव के पास एक पाव भाजी वाले अंकल रेडी लगाते हैं। उनके पाव भाजी बहुत टेस्टी होती है। धृति के लबों पर सौम्य सी मुस्कान थी। उसका जवाब सुनकर अर्णव चौंक गया। पेट भर जाएगा सिर्फ पाव भाजी से तुम्हारा? धृति ने उसका सवाल सुनकर तुरंत ही हामी भरी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और नहीं भरा तो उसके पास ही पानी पूरी वाले भैया भी दुकान लगाते हैं, वहां से तीखे तीखे पानी पूरी खा लूंगी। फिर पेट क्या, मन भी भर जाएगा और आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। ये कहते हुए धृति काफी खुश थी। शायद काफी वक्त बाद अपने मनपसंद की चीजें खाने वाली थी, इसलिए इतनी खुश और एक्साइटेड थी। अर्णव ने सर हिला दिया और कार मरीन ड्राइव की ओर घुमा दी। धृति खिड़की से बाहर देखने लगी, जो आधी खुली थी। ठंडी ठंडी हवा का झोंका बलखाते हुए कार में प्रवेश कर पूरी कार में थिरकते हुए खिलखिला रही थी। हवा से धृति की लटें बार बार उड़कर उसके चेहरे पर बिखर जातीं, जिन्हें वो अपनी उंगलियों से समेटकर कान के पीछे खोस लेती थी। चौर नजरों से इस खूबसूरत दृश्य को देखते हुए अनायास ही अर्णव के मन में ख्याल आया कि काश वो उन लटों में शामिल होता तो धृति के चेहरे पर बिखर उसे चूम लेता। खैर, ये मात्र ख्याल ही था, और धृति के चेहरे को चूमने की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पहले उसे उसके दिल तक पहुंचना था, और ये सफर जितना लंबा था उतना ही कठिन भी। अर्णव ने ये सोचते हुए एक ठंडी आह भरी और अपना सारा ध्यान सामने लगा दिया। वो वाले अंकल हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। कार में फैले सन्नाटे को चीरते हुए धृति की तेज आवाज अर्णव के कानों तक पहुंची और उसने चौंकते हुए उसकी ओर निगाहें घुमाई। धृति की निगाहें बाहर की ओर मुड़ी हुई थीं और उंगली से वो एक तरफ को इशारा कर रही थी। अर्णव ने उसके इशारे का अनुसरण किया तो उसकी निगाहें पाव भाजी की उस स्टॉल पर जाकर ठहरी जिसके आगे कुछ टेबल और कुर्सियां भी लगी थीं और काफी भीड़ भी लगी हुई थी। शायद वो काफी मशहूर थे, इसलिए वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उस जगह को देखते हुए अर्णव के चेहरे के भाव बिगड़ गए। धृति को जब अर्णव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सर घुमाकर उसे देखा। अर्णव की निगाहों को उस स्टॉल पर टिके और उसके चेहरे के बिगड़े भाव देखकर धृति की सारी एक्साइटमेंट पल में गायब हो गई। उसने एक बार फिर उस जगह को देखा जहां बस आम मिडिल क्लास लोग ही नजर आ रहे थे और अर्णव उनमें से नहीं था। वो अमीर था तो उसकी पसंद भी तो अमीरों जैसी होगी। भला ऐसी छोटी जगह जाना उसे कहाँ रास आएगा? उसे तो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट की ही आदत होगी। सड़क किनारे लगी स्टॉल का कुछ खाना उसकी शान के खिलाफ होगा। यही सब सोचते हुए धृति एकदम उदास हो गई। आपको ये जगह ठीक नहीं लग रही ना? आदत नहीं होगी आपको ऐसी जगहों पर जाने की। आप तो इतने अमीर हैं, बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट की ही आदत होगी आपको। आप यहाँ खुले में कुछ भी कैसे खा पाएंगे? मेरी ही गलती है, चलिए वापस वहीं चलते हैं। धृति की उदासी भरे शब्द अर्णव के कानों में पड़े तब कहीं जाकर उसका ध्यान उसकी ओर गया। कुछ पल पहले धृति का जो चेहरा खुशी से खिला था अब एकदम से मुरझा गया था। जो आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं अब उनमें मायूसी झलक रही थी और मुस्कुराते लब सिकुड़ गए थे। नहीं, यहीं जाएंगे, अर्णव ने बस इतना ही कहा और कार सड़क किनारे रोक दी। पर आप यहाँ कैसे? धृति दुविधा में फंस गई और परेशान से कुछ कहने को हुई कि अर्णव ने उसकी बात काटते हुए कहा, आदत नहीं है मुझे ऐसी जगहों पर जाने की, पर आदतों को बदला जा सकता है। तुमने जब इतनी तारीफ कर ही दी है तो मैं ट्राई करना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। अर्णव ने गंभीरता से अपनी बात कही, फिर अपना ब्लेजर उतारकर सीट के पीछे टांग दिया, बाजुओं के बटन्स को खोलकर आस्तीनों को कोहनी तक मोड़ दिया और एक नज़र खुद को फ्रंट मिरर में देखने के बाद कार से बाहर निकल गया। धृति भी बाहर निकल गई। अर्णव में घूमकर आकर उसका हाथ थामा और उस स्टॉल की ओर बढ़ गया। आप यहाँ बैठिए, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ, धृति ने खाली चेयर की ओर इशारा किया। अर्णव ने देखा तो उस चेयर के सामने लगी टेबल पर सब्जी गिरी हुई थी। ये देखकर ही उसका मुंह बिगड़ गया और धृति ने बेबसी से अपना सर हिलाया, फिर वहाँ काम करने वाले लड़के को बुलाकर टेबल साफ करवा दी। अर्णव सहज तो नहीं था पर धृति को उदास भी नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहाँ बैठ गया। धृति पाव भाजी वाले अंकल के पास चली आई और सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, नमस्ते अंकल। जानी पहचानी आवाज सुनकर उन लगभग 50 वर्षीय अंकल ने सर घुमाकर और अपना नजर का चश्मा ठीक करते हुए गौर से धृति को देखा। क्या हुआ अंकल, कुछ दिन नहीं आए तो भूल गए मुझे? अंकल को खुद को यूं गौर से देखते पाकर धृति ने मजाकिया लहजे में कहा और इसके साथ ही वो अंकल उसे पहचानते हुए मुस्कुरा उठे। अरे दिखरा तमे, घड़ा समय पछी आव्यो। वो अंकल गुजराती थे और अपनी मातृभाषा में ही बात कर रहे थे। धृति का यहाँ आना जाना था, इसलिए अंकल से अच्छी जान पहचान थी उसकी और उनकी भाषा भी समझने लगी थी वो। उनकी बात पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस अंकल, जिंदगी ने अचानक ऐसी करवट ली कि सब छूट गया। इतनी व्यस्तता आई कि पीछे पलटकर देखने का मौका ही नहीं मिला। अंकल ने अब गौर से धृति को देखा, फिर मुस्कुरा दिया, एवं लागे छे कि तमे लग्न करी लिधा छे। उनकी ये बात सुनकर एक पल को धृति खामोश रह गई। अपनी शादी याद करते हुए चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और एक बार फिर लबों पर मुस्कान सजा ली। जी अंकल, जरा जल्दबाजी में शादी हुई, फिर नई जगह नए माहौल में ढलने में वक्त लग गया। तमे खुश तो हो दिखरी? अंकल ने चिंता भरे लहजे में सवाल किया। शायद चेहरे पर आए उदासी के भावों को उनकी तजुर्बेकार आंखें पढ़ गई थीं। धृति ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जी अंकल, मैं खुश हूँ और आज अपने पति के साथ आपके पास आई हूँ। अपनी वर्ल्ड फेमस पाव भाजी खिलाइए ताकि वो आपके हाथ का स्वाद जिंदगी भर न भूल सके। धृति की बात पर उन्होंने मुस्कुराकर सहमति में सर हिला दिया।